एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्ते। कभी कभी कुछ कहानियां सवाल पूछने के अंदाज से ही हमें हिलाकर रख देती हैं। आज हम एक ऐसी ही किताब की दुनिया में चलेंगे, काज़ुओ इशिगुरो का मशहूर उपन्यास नेवर लेट मी गो।
इशिगुरो को 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और उनकी खासियत है, मतलब यादों, पहचान और गुजरे हुए कल को बहुत ही गहरे जज्बातों के साथ पेश करना,
और नेवर लेट मी गो इसका बेहतरीन उदाहरण है। पहली नजर में ये इंग्लैंड के किसी बोर्डिंग स्कूल की कहानी लगती है।
हाँ बिल्कुल, दोस्ती, प्यार, जलन, एक आम कहानी।
सही,
लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, हमें एहसास होता है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो हमारी दुनिया जैसी तो है, पर उसके नियम बहुत अलग और कह सकते हैं भयानक है।
बिल्कुल। और इस उपन्यास की सबसे खास बात यह है कि यह क्लोनिंग की साइंस पर फोकस नहीं करता, बल्कि उन किरदारों की इमोशनल दुनिया में ले जाता है जिन्हें एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। कहानी क्या है, इसके मुख्य किरदार कैथी, रूथ और टॉमी, उनका सफर कैसा है, और सबसे बढ़कर ये किताब हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है।
चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारी नैरेटर है 31 साल की कैथी एच।
अच्छा।
वो एक केयरर है, यानी एक देखभाल करने वाली, और वो अपने बचपन को याद कर रही है। उसका बचपन हेल्शम नाम के एक बोर्डिंग स्कूल में बीता था। बाहर से देखने में हेल्शम किसी सपने जैसा था, खूबसूरत इमारतें, हरे भरे मैदान।
हाँ, लेकिन उस सपने जैसी जगह में कुछ अजीब था, है ना? एक बेचैनी सी महसूस होती है। बच्चों की सेहत का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा जाता है, जैसे वो कोई बहुत कीमती सामान हो।
सही कहा। और उन्हें कला, मतलब पेंटिंग और कविता लिखने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया जाता है।
हाँ।
और उनकी सबसे अच्छी कलाकृतियों को मैडम नाम की एक रहस्यमयी औरत आकर एक गैलरी के लिए ले जाती थी।
ये गैलरी वाला आइडिया बहुत अजीब था।
बहुत। बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान था, लेकिन उन्हें ये कभी नहीं बताया गया कि ये गैलरी कहाँ है या इसका असली मकसद क्या है। उन्हें बस इतना पता था कि वे खास है।
पर इस खास होने का मतलब क्या है? ये एक अनकहा सच था जो बस हवा में तैरता रहता था।
इसी माहौल में कैथी, रूथ और टॉमी की दोस्ती पनपती है।
हाँ, रूथ जो बहुत तेज तर्रार है, लीडर बनना पसंद करती है,
और टॉमी थोड़ा शांत, अपने में रहने वाला लड़का है जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है क्योंकि वो कला में अच्छा नहीं है, और हेल्शम में तो कला ही सब कुछ थी।
और कैथी इन दोनों के बीच एक पुल की तरह है।
कहानी का एक बहुत ही मार्मिक पल है जब कैथी अपने कमरे में अकेली है और नेवर लेट मी गो गाना सुन रही है। वो एक तकिए को गोदने लेके ऐसे नाच रही है जैसे वो उसका बच्चा हो। तभी वो देखती है कि दरवाजे पर मैडम खड़ी हैं और उसे देखकर रो रही हैं।
उस वक्त कैथी को लगता है कि मैडम शायद इसलिए रो रही हैं कि वो कभी माँ नहीं बन सकती।
हाँ,
लेकिन एक पाठक के तौर पर हमें लगता है कि उन आंसुओं के पीछे कोई और, कोई ज्यादा गहरी और दर्दनाक वजह है।
यही इशिगुरो की बताया और नहीं बताया वाली तकनीक सामने आती है। सच हमेशा मौजूद है, पर उसे सीधे सीधे कहा नहीं जाता।
और ये चीज उन बच्चों के दिमाग पर कैसा असर डालती होगी?
ये उन्हें एक अजीब सी निष्क्रियता में रखती है। मिस लूसी नाम की एक गार्डियन एक बार हिम्मत करके उन्हें बताने की कोशिश करती है।
हाँ, वो कहती है।
वो कहती है कि तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं होगी जैसी तुमने सोची है। तुम्हें अंग दाता बनने के लिए बनाया गया है।
लेकिन स्कूल का मैनेजमेंट इस सच को तुरंत दबा देता है
और मिस लूसी को निकाल दिया जाता है। तो बच्चे अपने भाग्य को आधा अधूरा जानते हैं, पर उसे पूरी तरह समझते नहीं। वे कभी विद्रोह करने की सोचते ही नहीं,
क्योंकि उन्हें कोई और जिंदगी पता ही नहीं है।
बिल्कुल।
तो वे हेल्शम के सुनहरी जेल से निकलते हैं, फिर कहानी कहाँ जाती है?
16 साल की उम्र में वे हेल्शम छोड़कर द कॉटेजेस नाम की जगह पर आते हैं।
अच्छा।
ये कुछ पुराने फार्म हाउस जैसा है जहाँ उन्हें थोड़ी आजादी मिलती है। वे खुद खाना बनाते हैं, घूमते फिरते हैं और बाहरी दुनिया के लोगों से मिलते हैं।
और यहीं पर उनका प्रेम त्रिकोण और भी उलझ जाता है।
हाँ, यहीं पर रूथ, जो हमेशा से बाहरी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती थी, टॉमी के साथ एक रिश्ता शुरू कर लेती है।
और कैथी को महसूस होता है कि वो अकेली रह गई है।
बिल्कुल।
मुझे हमेशा लगता है कि रूथ जानती थी कि कैथी और टॉमी के बीच एक गहरा कनेक्शन है, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से वो उन दोनों को अलग रखती है।
सही कहा। ये इंसानी रिश्तों की उस जटिलता को दिखाता है जहां प्यार और जलन साथ साथ चलते हैं।
और इसी दौरान उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ आता है, नौफुक की यात्रा।
नौफुक? हाँ, हेल्शम के दिनों से ही उनके लिए ये एक जादुई जगह थी।
हाँ।
इंग्लैंड का खोया हुआ कोना, जहां खोई हुई चीजें वापस मिल जाती हैं। वे वहां रूथ की पॉसिबल को खोजने जाते हैं।
पॉसिबल यानी वो इंसान जिससे शायद उसे क्लोन किया गया था। ये अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को खोजने की कितनी दर्दनाक कोशिश है।
और ये कोशिश नाकाम रहती है। उन्हें जो औरत मिलती है वो रूथ जैसी बिल्कुल नहीं लगती।
इस नाकामी से रूथ टूट जाती है और अपना सारा गुस्सा टॉमी पर निकालती है।
हाँ, वो उससे कहती है कि उसकी कला का कोई मतलब नहीं है, जो टॉमी के लिए सबसे चुभने वाली बात थी।
लेकिन इसी यात्रा में उन्हें एक नई उम्मीद की किरण भी मिलती है।
डेफरल की अफवाह। सही, डिफरल यानी स्थगन। ये अफवाह कि अगर हेल्शम का कोई जोड़ा ये साबित कर दे कि वे सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उन्हें अपनी डोनेशन शुरू करने से पहले कुछ साल साथ रहने के लिए मिल सकते हैं।
और ये उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। अब कला का मतलब ही बदल गया है। अब ये आत्मा का सबूत बन गई है।
हाँ, ये उनकी अकेली उम्मीद है। लेकिन कैथी रूथ और टॉमी के बीच के तनाव से तंग आकर वहां से जाने का फैसला करती है और अपनी कैरियर की ट्रेनिंग शुरू कर देती है।
तो वो अपने दोस्तों को पीछे छोड़ देती है और फिर एक लंबा गैप आता है।
जब कहानी दोबारा शुरू होती है तो एक दशक बीत चुका है और सब कुछ बदल गया है ना।
हाँ, कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। कैथी अब एक तजुर्बेकार कैरर है जिसका काम डोनर्स की देखभाल करना है जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए,
यानी मर ना जाए।
हाँ, ये एक बहुत अकेला और मुश्किल काम है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी अगली पेशेंट रूथ है।
2 डोनेशंस के बाद रूथ बहुत कमजोर हो चुकी है और पछतावे से भरी है। आखिरकार वो कैथी से माफी मांगती है। वो मानती है कि उसने जानबूझकर कैथी और टॉमी को अलग रखा क्योंकि उसे लगता था कि वो उन दोनों के बिना अकेली रह जाएगी।
रूथ का ये कबूलनामा कहानी का एक बहुत ही इमोशनल मोड़ है। वो सिर्फ माफी नहीं मांगती बल्कि उन्हें एक करने की कोशिश भी करती है।
हाँ, अपने प्रायश्चित के तौर पर वो उन्हें मैडम का पता देती है और कहती है कि तुम दोनों को डेफरल के लिए कोशिश करनी चाहिए।
वो कहती है, तुम दोनों का प्यार सच्चा है, तुम्हें मोहलत मिलनी चाहिए।
इसके कुछ समय बाद रूथ कंप्लीट हो जाती है। उसकी मौत के बाद कैथी टॉमी की कैरियर बन जाती है
और सालों के इंतजार के बाद आखिरकार कैथी और टॉमी एक हो जाते हैं। लेकिन उनका साथ बहुत छोटा और कीमती है क्योंकि टॉमी भी अपने डोनेशन शुरू कर चुका है।
हाँ, और वे रूथ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला करते हैं। वो टॉमी की बनाई हुई ड्राइंग्स लेकर मैडम से मिलने जाते हैं, ये साबित करने के लिए कि उनका प्यार सच्चा है।
और यहीं पर
कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, जहां उनकी आखिरी और इकलौती उम्मीद भी चकनाचूर हो जाती है। वे मैडम से मिलते हैं और वहां हेल्शम की हेडमिस्ट्रेस मिस एमिली भी मौजूद होती हैं।
अच्छा।
वे उन्हें बताती हैं कि डेफरल जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं, ये बस एक अफवाह थी।
ये तो दिल तोड़ने वाला था, लेकिन इसके बाद जो खुलासा होता है वो शायद उससे भी ज्यादा भयानक है। हेल्शम और उस गैलरी का असली मकसद क्या था?
मिस एमिली बताती हैं कि हेल्शम एक प्रयोग था। वे कहती हैं कि हमने गैलरी इसलिए नहीं बनाई थी कि ये देखें कि तुम प्यार में हो या नहीं। हमने गैलरी इसलिए बनाई थी कि ये देखें कि तुम्हारी कोई आत्मा है भी या नहीं।
तो ये सब एक झूठ था। उनकी कला उनकी आत्मा का सबूत नहीं थी, बस एक प्रयोग का हिस्सा थी।
और वो प्रयोग भी फेल हो गया। हाँ, मिस एमिली कहती हैं कि दुनिया को जीवन रक्षक अंग तो चाहिए थे, लेकिन वे ये नहीं सोचना चाहते थे कि ये अंग कहाँ से आ रहे हैं।
वे एक ऐसी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते थे जो उन्हें असहज करें।
बिल्कुल, इसलिए हेल्शम जैसे प्रयोग बंद हो गए और क्लोन को सिर्फ मेडिकल सप्लाई की तरह देखा जाने लगा।
इस सच को जानने के बाद टॉमी पूरी तरह टूट जाता है। उसकी कला, उसकी उम्मीद, सब कुछ बिखर जाता है।
और जल्द ही अपने तीसरे डोनेशन के बाद वो भी कंप्लीट हो जाता है।
उपन्यास का अंत कैथी के अकेलेपन के साथ होता है।
हाँ, वो अपनी यादों के सहारे जी रही है और अपने भाग्य को स्वीकार कर चुकी है। वो गाड़ी चलाकर एक खेत के पास रुकती है और दूर तक फैले कबाड़ को देखती है और सोचती है कि शायद यहीं पर वो सब कुछ आकर जमा हो जाता है जो उसने अपनी जिंदगी में खोया है।
ये एक बहुत ही शांत और दिल दहला देने वाला अंत है।
बिल्कुल।
इस पूरी कहानी के बाद मन में कई सवाल रह जाते हैं। एक सवाल जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है इन किरदारों की निष्क्रियता। वे विद्रोह क्यों नहीं करते, भाग क्यों नहीं जाते?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मुझे लगता है कि उनकी निष्क्रियता ही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली और परेशान करने वाला हिस्सा है।
वो क्यों?
वे इसलिए विद्रोह नहीं करते क्योंकि उन्हें एक ऐसी दुनिया के बारे में पता ही नहीं है जहां वे आजाद हो सकें। उनकी पूरी परवरिश ही उन्हें यह स्वीकार करने के लिए की गई है कि यही उनकी नियति है। और शायद शायद ये हम सब की कहानी का एक रूपक भी है।
अच्छा, किस तरह?
हम सब अपनी नश्वरता के भाग्य को जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा अंत निश्चित है, फिर भी हम रोज सुबह उठते हैं, प्यार करते हैं, काम करते हैं और अपनी छोटी सी जिंदगी में अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं।
तो उनकी आज़ादी अपना भाग्य बदलने में नहीं, बल्कि उन सीमाओं के भीतर जीने का तरीका चुनने में है।
हाँ,
वे प्यार करते हैं, दोस्ती निभाते हैं, कला बनाते हैं, ये सब उस सिस्टम के खिलाफ उनके छोटे छोटे विद्रोह हैं। वे साबित करते हैं कि एक पूर्व निर्धारित जीवन में इंसानियत जिंदा रह सकती है।
बिल्कुल, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी की लंबाई शायद उतनी जरूरी नहीं है जितनी उसकी गहराई।
और ये हमें उन असुविधाजनक सच्चाइयों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है जिन्हें हमारा समाज नज़रअंदाज करना पसंद करता है सिर्फ इसलिए कि उनसे हमारा फायदा होता है। ये एक ऐसी किताब है जो पढ़ने के बहुत बाद तक हमारे साथ रहती है।
यह संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।